रात को सबके सोने के बाद अन्वय वापस अपने कमरे में आया। उसने देखा आन्या उसी जगह जमीन पर लेटी हुई थी जहां कुछ घंटे पहले वो खड़ी थी। खिड़की अब भी खुली थी। बाहर से ठंडी बर्फीली हवाएं आ रही थी जिससे कमरे का तापमान बहुत कम हो गया था। आन्या खुद में सिमटी हुई एकदम कपड़े की गठरी जैसे लेटी हुई ठंड से कांप रही थी। अन्वय ने उसे देखा तो जल्दी से आकर खिड़की बंद की और अलाव जला दिया ताकि कमरे में तापमान बढ़ सके। उसने आन्या को अपनी बाहों में उठा लिया। घर में एहसास होते ही आन्या उसमें सिमट गई और उसके सीने से अपना सिर टिकाते हुए अपनी बाहों को उस पर लपेट दिया। अन्वय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उसे अपनी बाहों में उठाए बिस्तर की तरफ पड़ गया। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया फिर उसकी बाह को खुद पर से हटाते हुए खुद पीछे हट गया। उसने उसे अच्छे से कंबल से ढक दिया। आन्या उसमें दुबक कर लेट गई, पैरों को पेट से पास फोल्ड कर लिया और बाहों को पैरों पर लपेट दिया। अन्वय समझ गया कि उसे बहुत ठंड लग रही है। उसने एक और कंबल उसे ओढ़ा दिया और आन्या को सीधा किया। उसके गोरे गोरे गालों पर आंसुओं की लकीरें बनी हुई थीं। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान बना हुआ था। गोरा गाल एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसने झुकते हुए उसके गाल को अपने होठों से छू दिया। आन्या के होंठ मुस्कुरा उठे। उसने हाथ उठाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराकर नींद में ही बोली, मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। अन्वय ने हैरानी से नजरें उठाकर उसे देखा। आन्या नींद में ही बोल रही थी। ये देखकर उसके होंठ भी हल्के से खिंच गए। उसने उसकी बाह को हटाया और उसे अच्छे से ढकने के बाद कुछ पल उसे देखने लगा। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद करके हाथ हवा में उठाया। इसके साथ ही वहां अनगिनत चमगादड़ रूपी वैम्पायर इकट्ठे हो गए। आज से आप सबकी जिम्मेदारी है इस कमरे की सुरक्षा का ध्यान रखना। कोई भी शक्ति इस कमरे के अंदर नहीं आनी चाहिए। आपको इस कमरे की और आन्या की सुरक्षा करनी है, वो भी ऐसे कि आन्या को भनक भी ना लगे कि उस पर हर पल किसी की नज़र है, अन्वय ने सबको आदेश देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सबने उसकी आज्ञा मान ली और अदृश्य हो गए। ये उसके खास वैम्पायर का ग्रुप था जिस पर उसे पूरा विश्वास था। अन्वय ने पलटकर एक नज़र आन्या को देखा फिर कमरे से बाहर निकल गया। इस बात से अनजान कि उसके आसपास कितने ही वैम्पायर अदृश्य रूप में मौजूद हैं, आन्या सुकून से सो रही थी। वहां से निकलकर अन्वय अपने कक्ष में चला गया। उसने नहाकर कपड़े बदले पर मन अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने बुकशेल्फ से एक उपन्यास निकाली और आराम कुर्सी पर बैठकर उसे पढ़ने लगा। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक ही आन्या की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। खुद को बिस्तर पर देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई। फिर उसकी आंखों के सामने अन्वय का चेहरा आ गया। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। अन्वय का हाथ उठाना उसे अब भी तकलीफ दे रहा था। उसने वापस सोने की कोशिश की पर आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं आया। उसने शॉल लिया और उसे खुद पर लपेटते हुए बैल्कनी में चली आई। बाहर खूब अंधेरा छाया हुआ था। शाम के हल्के हल्के उजाले में वो जगह जितनी मनमोहक लग रही थी रात के अंधेरे में उतनी ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। आसमान में मौजूद चांद की रोशनी ही थी जो कुछ प्रकाश बिखेर रही थी। वहां पर आन्या को यही नज़ारा तो देखना पसंद था। अब ऐसा क्यों था वो भी नहीं जानती थी, पर रात के अंधेरे से उसका कोई अलग ही जुड़ाव था। उसने अपनी बाहों को खुद पर लपेट दिया। सर्द हवाएं चल रही थीं जो जिसमें सिरहन पैदा करने का काम कर रही थी। आन्या को ठंड लग रही थी पर वो खुद में सिमटी खड़ी एकटक आकाश में चमकते चांद को देखने लगी। वो एकदम दीवार के पास खड़ी थी। रेलिंग जितनी ही दीवार थी वो। आन्या उसके कदम पास में खड़ी थी। अचानक ही एक चमगादड़ उसके एकदम करीब से गुजरा तो आन्या एकदम से घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई थीं। वो चमगादड़ उसकी बैल्कनी में आकर बैठ गया और अगले ही पल अन्वय में बदल गया। आन्या पलके झपकाते हुए एकटक उसे देखने लगी। अन्वय ने उसे देखते हुए सवाल किया, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सोई क्यों नहीं? देख नहीं रही कितनी ठंड है? कुल्फी जम जाएगी तुम्हारी। उसकी बात सुनकर आन्या ने हैरान परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, और कितने रूप है तुम्हारे यार? एक बार में ही बता दो ना, क्यों मुझे हार्ट अटैक दिलाना चाहते हो? जितने रूप तुमने देखे हैं उतने ही हैं, और तुमने तो कहा था तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, फिर अब तुम्हारी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? अन्वय ने उसके सीने में जोरों से धड़कते दिल की आवाज़ को सुनते हुए सवाल किया। उसकी बात सुनकर आन्या ने उस पर से निगाहें हटा ली और सामने चांद को देखते हुए बोली, सच कहा था मैंने, तुमसे डर नहीं लगता मुझे। वो तो अचानक ही तुम चमगादड़ के रूप में मेरे इतने पास से गुजरे, इसलिए थोड़ा घबरा गई थी। सोई क्यों नहीं? इतनी ठंड में इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अन्वय ने फिर से अपना सवाल दोहराया। आन्या को अब अपनी नाराजगी याद आ गई। उसने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या, कुछ भी करूं मैं? तुम्हें तो बस मुझ पर चिल्लाना, मुझे अपनी आंखों से डराना आता है, और अब तुम मुझ पर हाथ भी उठाने लगे हो। उसकी बात सुनकर अन्वय की निगाहें उसके गाल पर चली गईं, जहां अब भी उसकी उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसे भी अब बुरा लग रहा था। उसने आनिया की कलाई पकड़ी और अंदर ले जाने लगा, पर आनिया ने उसका हाथ हटा दिया और वापस दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। अन्वय वापस पलटकर उसके पास आया और अब थोड़ा प्यार से कहा, सॉरी, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, पर बार बार तुम मरने की बात कर रही थी, बस उसी से गुस्सा आ गया और हाथ उठ गया। क्यों, मेरे मरने की बात सुनकर तुम्हें गुस्सा क्यों आया? तुम्हें तो मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। तुम ही तो कहते हो कि मेरी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, फिर क्या फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? आनिया ने उसकी तरफ मुड़ते हुए सवाल किया। उसका सवाल सुनकर अन्वय ने उस पर से अपनी निगाहें हटा ली, कोई जवाब नहीं दिया। आनिया के होठों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। उसने वापस आसमान की तरफ निगाहें घुमाते हुए कहा, पता है कभी कभी मुझे खुद पर बहुत हंसी आती है, मेरी जिंदगी एक मजाक सी लगती है मुझे। जन्म लेते साथ माँ का हाथ सर से उठ गया और पिता, उन्होंने तो कभी सर पर हाथ रखा ही नहीं। माँ के जाने के लिए वो मुझे दोष देते रहे, फिर सौतेली माँ आई जिन्होंने माँ शब पर से मेरा विश्वास लगभग उठा ही दिया था, पर मैंने उस विश्वास को बचाए रखा। एक भाई है जो बहुत प्यार करता है मुझसे और मैं दो पल भी उसके साथ बैठ तक नहीं पाती। उसके बाद निहाल आया मेरी जिंदगी में, जिनसे प्यार के नाम पर मुझे छला गया, हर तरफ से नकारा गया। कभी किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ और अब जब किसी से दिल से जुड़ गई हूँ तो उसे भी मुझसे फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं मैं जिंदा ही क्यों हूँ, जब किसी को भी मेरे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। तो आनिया की बातों में उसका दर्द छलक रहा था। अन्वय खामोशी से उसकी बात सुन रहा था और आनिया एक टक चांद को निहार रही थी। कुछ देर वहां गहरी खामोशी छाई रही, फिर अन्वय ने उसकी कलाई खामते हुए कहा, अगर तुम्हारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता होता तो हर बार तुम्हें बचाने के लिए नहीं पहुंचता, तुम्हारी बातों पर इतना गुस्सा नहीं आता कि हाथ उठा दूं तुम पर। इतना कहकर वो उसे अपने साथ अंदर ले गया। आनिया खामोशी से उसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर जाने कितने ही भाव आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर अन्वय उन्हें इजाजत नहीं दे रहा था। अंदर जाकर उसने आनिया को बिस्तर पर बिठाया और खुद टेबल के दराज से क्रीम निकाली और उसके गाल पर बड़े ध्यान से लगाने लगा।
आनिया ने अब उसके चेहरे को देखते हुए कहा, इतनी परवाह करते हो मेरी, मेरी मौत का सुनकर ही अपना आपा खो देते हो। जब जब मुश्किल में होती हूँ, कभी भी क्यों ना हो, मुझे बचाने पहुँच जाते हो। तुम्हारी आंखों में दिखता है मेरे लिए तुम्हारा प्यार, फिर जुबान से इनकार क्यों करते हो तुम? जो आंखें कहती हैं उसे बस एक बार अपनी जुबान से बयां कर दो। अन्वय ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने उसके गाल पर क्रीम लगाई और पीछे हटते हुए बोला, रात हो गई है, सो जाओ। इतना कहकर वो जाने लगा तो आनिया ने उसका हाथ थाम लिया। अन्वय ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को मजबूत बनाते हुए बोला, आनिया, मुझे नींद नहीं आ रही, पहली बार इतने बड़े कमरे में रह रही हूँ, वो भी अकेले, नहीं जगह है, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकते मेरे साथ, जैसे घर पर रहते थे मेरे साथ? आनिया ने अन्वय की बात काटते हुए संयमित आवाज में उसे सब बता दिया। अन्वय ने अब अपनी आंखें खोल ली और उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, लेटो, यहीं हूँ मैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसने आनिया को लिटाया। आज पहली बार आनिया उसकी हथेली को अपनी हथेलियों में थामकर उसे अपने गाल से लगाकर लेटी थी। शायद पिछले तीन दिन जो उसने अन्वय के बिना बिताए थे उसकी वजह से अब वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। अब वहां बस अन्वय और आनिया ही थे। आनिया लेटी तो थी पर उसकी निगाहें अन्वय के चेहरे पर टिकी थीं। अन्वय ने उसकी आंखों पर अपनी दूसरी हथेली रखते हुए कहा, आंखें तो बंद करो, तभी तो नींद आएगी। आनिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ को कसके थाम लिया। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चली गई। अन्वय उसे अच्छे से ढककर वहां से उड़ गया और उसके पहरेदार कमरे के बाहर से ही उसकी सुरक्षा कर रहे थे। अगली सुबह आनिया की आंखें खुली तो वो कमरे में अकेली थी, ऐसा उसे लग रहा था। अन्वय को वहां न देखकर उसकी कल रात को उसके साथ हुई बातें याद आ गईं। उसने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, इट्स ओके आनिया, वो तो है ही खड़ूस, इतनी आसानी से अपने दिल की बात कैसे मान सकता है? पर उसकी आंखें चीख चीख कर कहती हैं कि उसे भी तुझसे प्यार है और तुझे बस उस प्यार को उसकी आंखों से उसकी जुबान तक लाना है, और तू ये बिल्कुल कर पाएगी। उसने होठों पर मुस्कान सजाई और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई।